नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 4। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है आपके सेल फोन साइलेंट मोड पर कर दीजिए इस वक्त। तो चौथा अध्याय और चौथे अध्याय का ये महत्वपूर्ण श्लोक, जहां भगवान एक सर्वसाधारण जीव किस प्रकार से आध्यात्मिक संसार को प्राप्त हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, जीते जी इसी जीवन में, इसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वेत्ति का अर्थ होता है जानने वाला। तो तत्वतः जानना, यही भगवान श्री कृष्ण को वास्तविक रूप में जानना है। और जैसे कि भगवान ने इस पूरे श्लोक में एक ऐसा आश्वासन दे दिया है कि कोई देवी देवता इस प्रकार का ऐलान नहीं कर सकता। जीव तो छोड़ दीजिए, 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई नहीं है जो इस प्रकार का आश्वासन दे सके, ऐसा ऐलान कर सके कि जो उन्हें तत्वतः केवल जान ले, बस जानने मात्र से भगवान यहां पर आश्वासन दे रहे हैं कि वो मेरे धाम निश्चित आता है, अर्थात उसको पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ही भगवान अगर कह देते कि मेरे धाम आ जाता है, तो भगवान के धाम को प्राप्त करना और अगला जन्म न होना एक बराबर है। तो क्यों भगवान ने यह भी कहा है कि पुनः जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता उसका इस संसार में? क्योंकि जो तत्वदर्शी हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं, जो मोक्ष के पीछे जा रहे हैं, जो मुक्ति कामी हैं, मोक्षकामी, तो वो अक्सर उनका फोकस किस पर रहता है कि अगला जन्म नहीं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से ये पता लगा लिया है कि इस संसार में फिर से जन्म लेना वो श्रृंखला शुरू, तकलीफों की, परेशानियों, कठिनाइयों की श्रृंखला शुरू। तो भगवान ऐसे जो तत्वदर्शी हैं उनके लिए कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं। और उसके साथ साथ बोनस क्या है उनके लिए? ये बोनस है भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो एक रिकैप लेंगे हम। अब तक हमने जो जो चर्चा कर ली है, चौथा भाग चल रहा है इस श्लोक का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता के कारण हम देख रहे हैं। तो पांच पहलू भगवान के जन्म की दिव्यता की हमने शुरुआत की थी, जनन, वर्णन, वंदन, सांत्वन, गमन। तो जनन की शुरुआत हमने की, श्री कृष्ण जन्म ऑफर्स 6 बेनेडिक्शंस। श्री कृष्ण जन्म ऑफर्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अर्थ प्रोवाइडिंग अबंडेंटली, रीइग्नाइटिंग द फायर ऑफ भक्ति, गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विस, ब्रिंग्स कोऑपरेशन अमंगस्ट अस। तो हमने इन 6 मुद्दों में से कितने मुद्दे अब तक डिस्कस कर लिए? हम पिछली बार चौथे मुद्दे पर थे, रीइग्नाइटिंग द फायर ऑफ भक्ति। आज हम उसी से शुरुआत करेंगे और फिर जो आगे के 2 मुद्दे हैं वो भी लेंगे। तो अब तक हमने हमारे 3 सेशन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिव्य होने के 6 कारण लिए हैं। Which child is born with a mission to save planet Earth? Second, which child chooses his parents even before his birth? Great personalities like Parikshit and Shukdev glorify Krishna's janma. Which child brings all auspiciousness with his birth, clears all confusion, provides abundant resources to Earth by his birth? तो आज हम फिर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जानने योग्य कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य क्यों है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे, यज्ञ कुंड जिनकी अग्नि शांत कर दी गई थी कंस के प्रकोप के द्वारा, तो अपने आप सारे यज्ञ कुंडों की अग्नि दहकने लगी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। तो हमारे आचार्य तात्पर्य इसका देते हैं, हमारा हृदय भी यज्ञ कुंड के समान है और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस यज्ञ कुंड की जो अग्नि है वो बंद हो चुकी है। और इस यज्ञ कुंड की अग्नि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण ही पुनः प्रज्वलित कर सकता है। तो हमारे अंदर जैसे कि लकड़ी, यदि हम पूछें कि लकड़ी के अंदर अग्नि पैदा करने की शक्ति होती है या नहीं, अवश्य। परंतु जब लकड़ी गीली हो जाए तो गीली लकड़ी के अंदर वो अग्नि शक्ति करने, अग्नि पैदा करने की जो शक्ति है वो नहीं दिखती है, तुझे सुखाना हो। तो भक्ति की प्रक्रिया क्या है कि हमारे अंदर सुप्त कृष्ण भक्ति है, अभी गीली हो गई, पुनः जागृत करना है। तो पुनः जागृत किस प्रकार से, हमने पिछली बार श्रवण एवं कीर्तन, तो भगवान अपने जन्म के द्वारा हमें श्रवण कीर्तन किस प्रकार से लाकर देते हैं, भगवान का जन्म, भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण और लीला। तो श्रवण और कीर्तन में नाम रूप गुण लीला, और ये विधि है हमारे अंदर की भक्ति पुनः जागृत करने की। तो हमने पिछली बार ये कथा प्रारंभ की थी, आज हम एक और कथा लेंगे कैसे सुप्त कृष्ण भक्ति जागृत हो सकती है श्रवण से केवल। तो ये महिला जो कि एक विधवा थी, फल बेचने वाली, मथुरा वाली, मथुरा की फल बेचने वाली, छह शिक्षाएं इस लीला से, केवल दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ये लीला सुना रहे, लेकिन हमारे आचार्यों ने इन दो श्लोकों के ऊपर, इस लीला के ऊपर बहुत उत्प्रेक्षा की है। तो हम अलग अलग जो हमारे आचार्य हैं जैसे कि वल्लभाचार्य इत्यादि, तो उनकी कुछ टीकाएं लेकर आपके सामने ये पूरी लीला में एक एक जो सीक्वेंस में कैसे सुप्त कृष्ण भक्ति जागृत होती है वो सिखाया गया है, वो देखेंगे। तो मथुरा में रहने वाली ये महिला कभी कृष्ण को देखा नहीं, आंखों से भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं। भगवान श्री कृष्ण, ये लीला हुई जब भगवान श्री कृष्ण 1 साल के केवल, कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं, और केवल वृंदावन से मथुरा कोई आते जाते लोगों से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती। तो 1 साल के भगवान, अब भगवान ने कोई बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं, हां पूतनावध की लीला हो गई, शकटासुर इत्यादि, तृणावर्त, ये सब लीलाएं हो चुकी थी, परंतु उससे ज्यादा ये बताया गया है कि ये जो फल बेचने वाली, ये भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर बाल लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण राक्षसों को मार रहे हैं, इससे ज्यादा जो माखन चोरी की लीला भगवान यशोदा माई के साथ या अन्य वरिष्ठ गोपियों के साथ जो समय बिताते, वो सारी लीलाएं उनका श्रवण ज्यादा किया था। तो मन में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण को देखने की लालसा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की लालसा, उसके अंदर वो जो अग्नि का उदाहरण हमने दिया, वो चिंगारी रूप में पहले, और चिंगारी से वो धीरे धीरे अग्नि में परिणित होने लगी। तो तो सबसे पहला लेसन हमने पिछली बार कथा से सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने का महत्व और उसकी शक्ति कितनी है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी यदि ना सुना जाए, स्पॉन्टेनियसली भी यदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में कोई सुन लेता है परंतु प्रामाणिकता से सुनता है या प्रामाणिक सूत्रों से सुनता है तो अवश्य ही उसके अंदर परिवर्तन आएगा, आज नहीं तो कल। तो ये सबसे पहला लेसन। अब ये दूसरा लेसन पिछली बार हमने नहीं लिया था, कथा के अनुसार एक एक लेसन है। तो जब इस महिला ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में भूरी भूरी मात्रा में सुन लिया या श्रवण कर लिया अच्छी मात्रा में, तो अब मन में उसकी जो इच्छा थी, लालसा, उसका घड़ा भर गया था। अब उसको बस मुझे देखना है ये कौन है कृष्ण, इतना सुंदर इसका वर्णन दिया गया है, कौन है ये कृष्ण। अब देखो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं, तो इसलिए जो कृष्ण कथा प्रामाणिकता से सुनता है तो उसके अंदर भगवान का वो जो नाम है या भगवान के जो गुण हैं वो अंदर लालसा पैदा करते हैं अपने आप। तो वो निकली मथुरा से वृंदावन की ओर, और कोई साधन उसके पास नहीं था तो केले के वृक्ष का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर जमुना पार करने के लिए उसके ऊपर वो सवार हुई और फलों की टोकरी भरकर, और उसने बहुत उत्कृष्ट प्रकार के फल, मथुरा के जितने सारे उत्कृष्ट फल थे वो सब फलों को पहले चुना, अपनी टोकरी में डाला और फिर मथुरा से वो केले के वृक्ष के ट्रंक के ऊपर बैठकर, वो तैरना उसको नहीं आता था और कैसे तैरती वो टोकरी लेकर, तो उसके ऊपर कोई नाविक नहीं था, कोई नाव नहीं, किसी का सहारा नहीं, अकेली वृंदावन की फल वल नहीं, उसको कोई बिजनेस नहीं करना था, ये फल बहाना था। क्यों? क्योंकि वो एक अबला विधवा स्त्री थी, तो बिना बहाने के यदि ब्रज में जाएगी तो लोग पूछेंगे कि ये कर क्या रही अकेली यहां, तो इसलिए यदि फल की टोकरी रहेगी तो कोई पूछेगा नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा ये दूसरा लेसन क्या कनेक्शन आ रहा है, कंटेंट ऑफ आवर माइंड कम्स आउट थ्रू आवर माउथ। तो वो ब्रज जैसे ही पहुंची तब जनरली हमने कितने फल वालों को देखा है, यहां वृंदावन कॉलोनी में रोज घूमते रहते हैं, संतरा मौसम्बी, संतरा मौसम्बी, केली केली, संतरा मौसम्बी, केली केली, संतरा, घूमता रहता है। आजकल तो फिर भी फल वाले घूमते, पहले तो केवल वो भंगार वाला घूमता रहता था दिन भर। भंगार खरीदते हैं ना, तो अब ये इतना ज्यादा भगवान, इसको कहते हैं कृष्णमयी होना, इतना ज्यादा ये कृष्णमयी हो चुकी थी कि जब ये ब्रज पहुंची और ब्रज पहुंचकर अब साधारणतः इसे अपने फलों को एडवर्टाइज करना था ना कि ये फल ले लो, क्योंकि इसके मन में केवल कृष्ण 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 को देखना है, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम, बस वही चल रहा था। तो जो उसके मन में था वही उसके मुख से आने लगा, तो वो फलों का नाम नहीं ले रही थी, वो ब्रज में हाथ में सर के ऊपर टोकरी लिए कृष्ण दामोदर माधवेति, कृष्ण दामोदर माधवेति, कृष्ण दामोदर माधवेति, इस प्रकार से। और हुआ क्या, बहुत सुंदर तरीके से श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि शुरुआत उसको गाना वाना कुछ नहीं आता था, संगीत का कोई ज्ञान नहीं, कोई दक्षता नहीं। उसने जैसे ही अब तक वो केवल श्रवण कर रही थी, अब पहली दफा कीर्तन प्रारंभ किया उसने, अब तक उसने केवल श्रवण किया था। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो व्यक्ति ठीक से श्रवण करता है वही ठीक से कीर्तन कर पाएगा, जिसने श्रवण ठीक से नहीं किया है कीर्तन उसका, कीर्तन का अर्थ केवल बहुत लंबा लंबा आलाप लेकर गाना, उसको कीर्तन नहीं कहते। हृदय से शुद्धता से उसको कीर्तन कहते हैं। तो फिर पहले तो ये केवल श्री कृष्ण दामोदर माधवेति ऐसे, फिर वो गाने लगी श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, अपने आप धुन निकली और वो आश्चर्यचकित हो गई, आज तक जीवन भर मैंने कभी कुछ कीर्तन कभी गीत नहीं गाया, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, गाते रहो दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। तो यदि हमारे मन में भी, चाहे हम ऑफिस में कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, चाहे हम कहीं दुकान पर कोई कपड़े बेच रहे हो या सब्जी बेच रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, यदि मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला चल रहा है, तो अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे कीर्तनकार बन जाओगे। तो अच्छे कीर्तनकार बनने का रहस्य क्या है, ये फल वाली सिखा रही है, इसने जो पक्का श्रवण किया था। तो सब लोग देख रहे हैं कि ये कौन सी अजीब फल वाली है, कौन इसका फल खरीदेगा, जो बताई नहीं रही है कि इसकी टोकरी में कौन से फल हैं, परंतु वो क्या बता रही है कि मेरे मन में क्या है। तो इसलिए ये दूसरी शिक्षा है इस कथा से कि हमारे मन में यदि केवल इस संसार की बातें रहेंगी हर समय, तो हर समय हमारे मुख से वही बात निकलती रहेगी। और यदि हम कहें कि नहीं 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 नहीं, मैं तो हरे कृष्णा का भक्त हूं, मैं अपने मुंह से वो बात कभी नहीं निकालूंगा, इस संसारी बातें और प्रजल्प, परंतु यदि मन में हम वही सोच रहे हैं, यदि मन में हम वही सोच रहे हैं, तो होगा क्या, एक न एक दिन वो बात मुख से बाहर आने ही वाली। तो इसलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जहां हमें बहुत ही व्यावहारिक तरीके से ये फल वाली सिखा रही है कि वो ब्रज पहुंची और वहां पर केवल उसके मुख से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान निकलने लगा। अच्छा, एक और बात, हमारे आचार्य कहते हैं कि उसे पता नहीं था कि भगवान रहते कहां हैं, कोई एड्रेस उसे पता नहीं कि रहते कहां हैं भगवान। वहां पर ब्रज में पहुंचते ही उसने जब कीर्तन प्रारंभ किया, तो जैसे भगवान नारद मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं नारद मुनि से, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद मुनि, मैं कोई योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता, बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दी कि मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता जहां पर मेरे भक्त एकत्र होते हैं, और एकत्र होकर जब वो मेरा श्रवण और कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो अवश्य ही मैं वहां पर अवतरित हो जाता हूं, मौजूद रहता हूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण किए क्या? भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि ये आने वाली है, तो भगवान श्री कृष्ण तब तक अपने भवन से बाहर नहीं निकले। अब सोचिए, छोटा सा एक वर्षीय बालक, मां हर समय अपनी नजर रखती है, कुछ भी काम कर रही हो, छोटा सा बालक उतना छोटा बालक हर समय उसकी नजर रहती है। तो यशोदा माई को चकमा देना है, क्योंकि वो जाने नहीं देगी, अनजान कौन है ये महिला, अभी भी वो पूतना ने कारस्थान किया था अपना। तो भगवान प्रतीक्षा में थे कब ये कीर्तन प्रारंभ करें, क्योंकि इसका कीर्तन इतना मनमोहक था कि जहां से वो गुजरती सब स्तब्ध रह जाते इसके कीर्तन को सुनकर। कोई मृदंग नहीं, कोई करताल नहीं, कोई माइक सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, मंत्र मुग्ध कर देने वाला कीर्तन है इस महिला का। तो भगवान जानते थे कि बाकी सब स्तब्ध रह जाएंगे और मैं फिर जा सकता हूं। तो यहां पर हमारे आचार्य तीसरी शिक्षा देते हैं, इफ यू कॉल सिंसियरली कृष्णा विल श्योरली कम। ऐसा कोई भी भक्त पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, जिसने प्रामाणिकता से भगवान को नहीं बुलाया और भगवान नहीं पहुंचे हो। कभी फेल नहीं हुए भगवान। हम लोग प्रश्न पूछ रहे होंगे, हम इतने सालों से बुला रहा हूं, आते क्यों नहीं? तो हमारी समस्या क्या है, जैसे आपको सेलफोन के नंबर होते हैं ना, उसमें से एक डिजिट भी यहां वहां हो जाए कहीं और कॉल चला जाता है ना, एक डिजिट भी यहां वहां हो जाए, तो हम लोग तो हमारी ओर से चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हर समय वो महामंत्र भी कई बार हम ठीक से पूरा नहीं, जो 16 शब्दों का अपना 16 अक्षरों का है वो पूरा नहीं बोल सकते हम लोग। उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार से कभी हरे खा जाते हैं। हाँ, एक हमारी डिवोटी ने सेमिनार दिया था चैंटिंग के ऊपर, जपा के ऊपर, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज बताए थे कि कौन कौन से चैंटर्स होते हैं। एक चैंटर होता है द हंग्री चैंटर, उसको सुबह सुबह इतनी भूख लगी होती है कि अभी तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है तो महामंत्र खाना शुरू कर देता है, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, तो बीच बीच में वो वर्ड्स को खाने लगता। और कई होते हैं जो बहुत दानवीर होते हैं, भगवान ने महामंत्र में केवल कुछ शब्द दिए हैं, वो अपनी ओर से ऐड करते रहते हैं, उसको बोलते हैं द डोनर्स चैंटिंग, डोनर्स चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम, लगा दिया अपनी ओर से एक्स्ट्रा। तो होता क्या है कि हम लोग नंबर ही एक डिजिट यहां वहां गड़बड़ करते हैं तो कॉल कहीं और ही चला जाता है, माया देवी उठा लेती है, हाँ बोलो भाई, यहां पर इसलिए हमने क्या है, इफ यू कॉल सिंसियरली कृष्णा विल श्योरली कम। तो भगवान कैसे आए, इस कथा में हमने सुना है कि भगवान जानते थे, अभी देखो एक वर्षीय भगवान ने देखा था कि मेरी मां जब भी कुछ लेती है तो बदले में कुछ देती है, तो अनाज के दाने, तो चावल के कुछ दाने हाथ में लिए, छोटी सी हथेली भगवान की, कितने चावल के दाने टिक पाते थे। तो नंद भवन से जब बाहर सड़क पर भाग रहे हैं तो धीरे 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 जब तक पहुंचे चावल के दाने सारे नीचे गिर चुके थे, हथेली में कुछ भी नहीं था। तो इसे एक और शिक्षा ये है कि भगवान अपनी हथेली में मुट्ठी बंद किए हमको कुछ देने आएंगे और हमें क्या लगता है कि उस मुट्ठी के अंदर कुछ अनाज के दाने होंगे, नहीं। क्योंकि बहुत सुंदर यहां पर उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान ने सोचा कि मैं कुछ भौतिक रूप में भी दूं इससे, हालांकि बाद में भगवान ने दिया, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका ही गुणगान किया। तो रास्ते में भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, मेरी शुद्ध कृपा ही इसे मिलनी चाहिए, इसलिए एक एक करके अनाज के दाने गिरते गए गिरते गए गिरते गए। नहीं, तो खाली हथेली भगवान ये दर्शाते हैं शुद्ध कृपा भगवान की। तो इसलिए जो अगला लेसन है कि इस महिला के अंदर भगवान, ये भर भर के भगवान के हाथों में फल डालने लगी, भगवान के छोटे छोटे से हाथ वो भर गए, फिर भगवान के दोनों हाथ को ऐसे कर लिया और भगवान के हाथों में वो फल डालने लगी। लेकिन इससे पहले हुआ क्या, इससे पहले ये हुआ कि भगवान जैसे ही उस फल वाली के समक्ष पहुंचे तो भगवान ने उसको मैया बोलकर संबोधित किया, उसे मैया पुकारा। तो जैसे ही भगवान को इसने देखा, अब तक ये केवल सुन रही थी, अब जब भगवान के इतने सुंदर मुखारविंद को देखा इसने और भगवान का जो वर्ण था ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूर से इंद्रनील रत्न चलता हुआ आ रहा है, ऐसे लग रहा था मानो कोई माखन का टुकड़ा, छोटा सा एक वर्षीय माखन का टुकड़ा, नीले रंग का माखन का टुकड़ा चलते हुए आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जब भगवान के सुंदर मुख को, मुस्कुराते हुए मुख को देखा और फिर भगवान की वाणी सुनी, मैया वो भी पुकारा भगवान ने इसे, तो इसे रहा नहीं गया, इसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में रखा और एक बार फिर मुझे मैया बुलाओ। तो भगवान ने एक बार फिर उसके कानों की ओर अपना मुख करते हुए उसको मैया पुकारा। और फिर उसने, तो यहां पर शिक्षा ये है, यू कैनॉट सर्व कृष्णा अंटिल एंड अनलेस यू आर चार्म्ड बाय कृष्णा। हम लोग बाहरी रूप से बहुत कुछ अर्पित करते होंगे, परंतु क्या हम भगवान की उस सुंदरता से, उनके गुणों से, उनकी कृपा से इतना आकर्षित हैं कि हमसे रहा नहीं जा रहा, जैसे इससे रहा नहीं जा रहा था कि मैं क्या दूं। और इसे पता था कि जब मैं भगवान को देखूंगी तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ देना है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्वाभाविक रूप से देते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इफ यू रियली वॉन्ट टू सर्व कृष्णा, फर्स्ट बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा। हाउ विल यू बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णा? बाय चैंटिंग सिंसियरली। कॉलिंग मीन्स चैंटिंग सिंसियरली। हाउ विल यू चैंट सिंसियरली? वेन यू हियर अटेंटिवली। नेक्स्ट, कृष्णा ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विथ अवर डिवोशन। तो भगवान ने रेसिप्रोकेशन कैसे किया? उसकी टोकरी उसने खाली कर दी, उसकी पूरे फलों की टोकरी खाली कर दी, भगवान ने साइमल्टेनियसली उसके टोकरी को हीरे जवाहरात से भर दिया। उसे पता भी नहीं कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भर गई है। तो यहां पर नेक्स्ट लेसन क्या है, कृष्णा ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विथ अवर डिवोशन मोर देन वॉट वी ऑफर टू कृष्णा। अब देखो, उसने भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो उसने भगवान को केवल कुछ फल ला कर दिए थे, बस केवल कुछ फल। फल के बदले में भौतिक रूप से भगवान ने उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भर दी। आध्यात्मिक रूप से उसने पहली दफा भगवान का कीर्तन किया, कितने दफा कितनी बार किया, बस जब तक कि वो नंद भवन तक पहुंचे उतना ही कीर्तन। ऐसा नहीं था कि वो रोज सोलह माला कर रही थी, रोज उसने बहुत लंबे लंबे कीर्तन के सेशंस किए थे, नहीं। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो क्वांटिटी उसके कीर्तन का बहुत कम था, उसके बदले में भगवान ने उसके अंदर जो कृष्ण प्रेम संचारित कर दिया, अनलिमिटेड कृष्ण प्रेम वॉज ट्रांसफर्ड। अब इस संसार में देखो, इस संसार में आप हर समय जब कुछ देने का प्रयास करते हो, हमारा वो जो बिजनेस मेंटालिटी क्या रहता है, कम से कम दूं ज्यादा से ज्यादा लूं। एडवर्टाइजमेंट भी आजकल ये होते हैं, कम से कम पैसे में कैसे आपकी कमीज सफेद हो जाएगी, कम से कम पाउडर में ज्यादा से ज्यादा कपड़े। तो यहां का जो आदान प्रदान है उसके अंदर स्वार्थ है। एक हैदराबादी परिवार, अब देखो वो लोग अलग प्रकार से हिंदी कहते हैं, उनोकु मैं बोला। तो एक हैदराबादी परिवार में हुआ क्या कि शाम के समय बच्चा स्कूल से घर लौट रहा है, वो मां स्वेटर बुन रही है, रोते रोते बच्चा आया घर पे, काईकू रो रहा रे, मां ने पूछा। क्षमा करना, आपको वृंदावन से हैदराबाद ले जाना। तो स्वेटर बुन रही है, तुरंत कायकू रो रहा रे, तो वो भी बेचारा रोते रोते, टीचर मेरे को मारी, कौन सी इंग्लिश वाली वो चुड़ैल, वोइच मारी, कायकू मारी। तो ये कहता है मैं उसको मुर्गी बोला। अरे तू मुर्गी कायकू बोला, कायकू बोले तो, मुर्गी कायकू बोले तो हर पेपर में अंडा दे रही। भौतिक संसार में ये होता है, कोई अंडा दे रहा है उसको मुर्गी बनाया जा रहा है। तो संसार का आदान प्रदान इस प्रकार का है। यहां पर कृष्णा, उनके बारे में कहा गया कृष्णा ऑलवेज रेसिप्रोकेट्स विथ अवर डिवोशन। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन इस लीला का टुवर्ड्स द एंड। अब हुआ क्या कि भगवान वो सारे फल लेकर नंद भवन के अंदर जाते हैं। ये वहां पर जब टोकरी उठाने जाती है तो ये देखती है कि ये टोकरी खाली क्यों नहीं, ये भरी हुई कैसे, इतनी भारी क्यों है, इतनी भारी वो टोकरी। तो उसने जब देखा ये क्या है, इतने हीरे जवाहरात, यदि हम होते हम होते तो हमारा क्या हाल होता, उन्हें को बुलाओ और देती। तो वहां पर अब देखिए इस महिला ने किया क्या, इस महिला ने किया क्या, जब इस महिला ने देखा कि कुछ फल मैं लेकर आई और ये कृष्ण मुझे मैया बुलाए और मेरे सारे फल ले लिए और मेरे अंदर एक ऐसा उत्साह स्फूर्ति कृष्ण प्रेम की जागृत कर दी, तो इसने सोचा कि मैं रोज लाऊंगी अब फल, लेकिन अब रोज फल लाऊंगी तो टोकरी तो एक ही है मेरे पास, एक ही टोकरी थी उसके पास, तो मुझे टोकरी चाहिए फल के लिए, खाली करनी है। तो वो बांटने लगी, वो जितने खाली करने लगी उसको, जो भी रास्ते से गुजरता उसको देने लगी, ए ले, ए ले। असली हीरे के हार, सोने चांदी सब कुछ बांटने लगी। क्यों? क्योंकि उसे टोकरी खाली चाहिए थी। तो जब कृष्ण कृपा प्राप्त होती है तो वो व्यक्ति बिना बांटे नहीं रह सकता, वो हर समय बांटता है वो भगवान की कृपा को। और भगवान क्या कर रहे थे, अब भगवान पहुंचे तो माता यशोदा ने पूछा कि ये इतने सारे फल किसने दिए तुझे, तो भगवान ने कहा वो फल बेचने वाली आ रही थी, तुम अंदर वो माखन बिलो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही आज जाकर शॉपिंग कर लूं। तो माता यशोदा ने जब देखा कि मेरा छोटा सा एक वर्षीय बालक फल लेकर आया, तो भगवान ने माता यशोदा से कहा कि हम ऐसा करते हैं, इस फल को हम बांटते हैं मेरे मित्रों में और भी सबको, जितने पशु पक्षी उन सबको बुलाकर हम ये फल बांटते हैं। तो माता यशोदा को भी अच्छा लगा, ठीक है बांटते हैं। भगवान हाथ में लिए हुए वो सारे फल माता यशोदा बांट रही है, एक सखा, एक पशु, एक गाय, एक बछड़ा, ये लोग सब एक एक करके आने लगे। इतने जितने सारे ग्वाल थे, ग्वाल बाल थे, वो सारे आ गए, जितने वरिष्ठ गोप थे सारे आ गए, पूरा वृंदावन आ गया, फिर भी वो फल खत्म नहीं हुए। तो वहां पर वो भगवान की कृपा बांट रही है, यहां पर भगवान उसका दिया हुआ जो भोग है वो बांट रहे हैं। ये है ट्रांसेंडेंटल कॉम्पिटिशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक शुद्ध भक्त जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है तो उन दोनों में तार लागी हुड़ा हुड़ी, बंगाली में कहा गया है तार लागी हुड़ा हुड़ी, स्पर्धा, होड़, हिंदी में जो शब्द है ना होड़ लग जाना, तो दोनों के अंदर अब यहां पर ये रोज अपनी टोकरी भर के फल लाती, भगवान को देती, भगवान इसकी टोकरी भर देते, वो टोकरी बांट देती हीरे जवाहरात की सबको, फिर से फल भरकर फिर से देती, फिर से। तो इन दोनों में रोज ये कॉम्पिटिशन चालू रहा। अब देखो भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन किसी व्यक्ति को किस हद तक पहुंचा सकता है। हम कौन से मुद्दे पर हैं? लॉर्ड श्री कृष्णाज बर्थ रीइग्नाइट्स द फायर। हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता के उस कारण पर हैं कि हमारे हृदय रूपी यज्ञ कुंड की जो अग्नि अब शांत हो चुकी है उसको फिर से पुनः प्रज्वलित करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म के रूप में। तो इसलिए हमने पिछली बार अवेकन्स अस फ्रॉम अवर इल्यूजरी ड्रीम लाइफ, नॉलेज, इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग, अट्रैक्शन, डिजायर टू सर्व एंड प्लीज दैट ऑब्जेक्ट, प्यूरिफाइज अस फ्रॉम विद इन। तो अब यहां पर हमने पिछली बार वो एग्जाम्पल लिया था अपने अलार्म क्लॉक का, याद है आपको? हम स्नूज कर देते हैं, उठ के वापस हो जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, पहले हमारे यहां पर भी कॉलोनी में घुमा करता था, ये जो कॉलोनी के अंदर घूमते हैं ना वो वॉचमैन, रात को डंडा ले लेके सिट्टी बजाते हैं और डंडा मारते रहेंगे वो सड़क के ऊपर। देखा, सुना आपने? रात मेरे को आज दिन तक उसको लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो, अब वो चिल्लाते भी क्या है, जागते रहो, है ना? तो भाई तेरे को क्यों लगाया है? सबको बोल रहा है तुम जागते रहो, चोर आएगा तो तुम ही पकड़ो। तो मुझे लगता है वो पूरा सेंटेंस हम लोग नहीं सुने होंगे, पूरा सेंटेंस ये बोलता होगा, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। शायद ये पूरा स्टेटमेंट होगा। परंतु कृष्ण कथा क्या है? कृष्ण कथा जब भी हमारे कानों में, तो कृष्ण कथा हमको क्या कह रही है? जागते रहो, लाइट भी चली जाए तो। तो अब हम ये जो कृष्ण कथा का श्रवण, छह वरदान, ये छह वरदान बताए गए हैं किसने? परीक्षित महाराज, जो कि श्रवणाचार्य हैं। नवदा भक्ति में हरेक जो अंग हैं उनके आचार्य बताए गए हैं। तो श्रवण कीर्तन, कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज, जैसे ही परीक्षित महाराज ने भगवान की बाल लीला श्रवण करना प्रारंभ किया, पूतनावध की लीला इत्यादि श्रवण करना प्रारंभ किया, तो परीक्षित महाराज अब इतना उत्साही हो गए श्रवण करने के लिए कि वो सुखदेव गोस्वामी को बीच में कहते हैं, रुको रुको, मैं पहले ये जो श्रवण मैं कर रहा हूं, मुझे अंदर क्या हो रहा है, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को उनकी कथा के बीच में रुकवाते हैं और कहते हैं, येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चन प्रभो। ये भगवान के जो विभिन्न अवतारों की कथा आज अब तक नवे स्कंद तक आपने जो सुनाई वो तो सब बहुत ही अच्छी थी, परंतु ये भगवान हरि ईश्वर, ये भगवान श्री हरि की कथा जो प्रारंभ आपने की है, करोति कर्ण रम्याणी, मेरे कानों के लिए न केवल रमणीय है भगवान श्री कृष्ण की कथा, बल्कि मनोज्ञानी चिन्ह प्रभो, ये मेरे मन को शुद्ध करने वाली ये है कृष्ण कथा। और फिर वो कहते हैं वो छह वरदान, जो भी शख्स इस भौतिक संसार का बद्ध जीव हो चाहे शुद्ध आत्मा हो, वो यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रामाणिकता से सुनता है तो कौन से छह वरदान उसे प्राप्त होते हैं? यत श्रृणवताम अपैति अरतिर्वितृष्णा सत्वम च शुद्ध चिरेण पुंसाम भक्तिर हरौ तद पुरुषे च सख्यम तदैव हारम मद मन्यसे चेत। इस सुंदर श्लोक में वो कहते हैं कि सबसे पहला वरदान भगवान श्री कृष्ण की कथा जो प्रामाणिकता से सुनता है, सबसे पहला वरदान है अरति। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे अंदर इस भौतिक संसार में एक स्वाभाविक अरति जागृत हो गई है। वेरी स्ट्रेंज, स्टेइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वी हैव डेवलप्ड अ नेचुरल स्पॉन्टेनियस अनअट्रैक्शन फॉर कृष्णा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो नेचुरली ये जो अरति है वो अपैति, अपैति का अर्थ है वो दूर होती है, वो दूर होती है। जैसे बहुत से हैं, आप उनको काम करवा लो, 8-8 घंटा गधा मजूरी कर लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के लिए कहो, जिसे प्रभुपाद कहा करते थे, सो वी टेल चांट 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 एंड दे से कांट कांट कांट, सो अनफॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि कई कई मैंने देखा है कि स्पॉन्टेनियसली भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनके अंदर एक प्रकार का अनअट्रैक्शन जागृत हो जाता। तो कृष्ण कथा से सबसे पहला वरदान वो है कि वो दूर हो जाता है। अच्छा, ये ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनअट्रैक्शन है और उसके साथ साथ इस भौतिक संसार के प्रति वितृष्णा। तृष्णा कहते हैं भौतिक संसार की भूख प्यास, तो उसके प्रति इतना अट्रैक्शन है। देखो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है हमारे अंदर, भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अनअट्रैक्शन और इंद्रिय भोग के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, और ये दोनों चीजों को लेकर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्यों तकलीफ होती है हमारे अंदर साधना भक्ति में, ये दोनों चीजें खींचती रहती भगवान के प्रति, नहीं 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 अट्रैक्शन नहीं अट्रैक्शन, और इंद्रिय भोग के प्रति इतना अट्रैक्शन इतना अट्रैक्शन। तो अपैति अरति, अपैति वितृष्णा, परीक्षित महाराज कहते हैं दोनों दूर हो जाती कृष्ण कथा श्रवण करने से। फिर उसके बाद में होता क्या है, सत्वम यत् श्रेणवताम अपैति अरति वितृष्णा सत्वम। जब ये दोनों चीजें दूर हो जाती है हमारे हृदय से, तब जाकर हम सत्वगुण में स्थित होते हैं। तो ये है तीसरा वरदान। फिर चौथा वरदान, जब सत्वगुण में स्थित होते हैं तब शुद्ध्यति, तब शुद्धिकरण प्रारंभ होता है हमारा। हमको कई बार लगता है कि अरे मैं अभी अभी हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला मैंने आज कर लिया, कोई सफाई नहीं हुई अंदर। नहीं, ये कौन सा स्टेज है सफाई का, चौथा स्टेज है प्यूरिफिकेशन का, सत्वगुण के पश्चात। और फिर परीक्षित महाराज कहते हैं, जब शुद्धिकरण शुद्ध्यत्य चरिणे पुंसाम हरि भक्ति, हमारे अंदर जो सुप्त हरि भक्ति है, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण जन्म रीइग्नाइट्स द डोरमेंट फायर ऑफ भक्ति। तो यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से जो पांचवा वरदान है, भक्ति फॉर लॉर्ड हरि गेट्स रिवाइव्ड, और फाइनली लव अमंगस्ट फेलो डिवोटी इंक्रीजेस। केवल उतना ही नहीं, तद भक्तौ पुरुषे च सख्यम, जिन भक्तों के साथ हम बैठकर श्रवण करते हैं उन भक्तों के प्रति हमारा प्रेम, न केवल वो, परीक्षित महाराज कहते हैं कि सारे जीवों के प्रति हमारा प्रेम जो है वो जागृत होता है। तो ये हैं 6 वरदान भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण करने के। तो ये उदाहरण हमने लिया फल वाली का। अब दूसरा उदाहरण आज हम लेंगे रुक्मिणी देवी और रुक्मिणी हरण। तो जैसे उस फल वाली ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था श्रवण करने मात्र से आकर्षण, वैसे ही रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा, केवल श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुना, और जो आकर्षण रुक्मिणी के अंदर भगवान के प्रति इतना तीव्र कि शादी के एक दिन पहले, नहीं शादी के ही दिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की हुई। शादी किससे होने वाली थी, शिशुपाल, शिशुपाल से शादी होने वाली थी। तो हम अब चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी स्थिति और रुक्मिणी देवी की स्थिति, हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं रुक्मिणी देवी से। तो सबसे पहले रुक्मिणी देवी, हमारे आचार्य उनकी तुलना कर रहे हैं, हम लोग प्रकृति जो कि भगवान पुरुष है। तो रुक्मिणी देवी का विवाह परम पुरुष भगवान से हुआ, तो हम भी जो प्रकृति हैं, हमारे लिए हमारे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्ति में जुड़ना अर्थात उनसे हमारा विवाह। सो रुक्मिणी देवी इज द लिविंग एंटिटी प्रकृति, कृष्ण इज द सुप्रीम हस्बैंड पुरुष। भीष्मक, भीष्मक रुक्मिणी देवी के पिताजी, तो भीष्मक ये चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, परंतु जो उनका बेटा था रुक्मी वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह किससे हो, शिशुपाल से हो। तो भीष्मक उनकी नहीं चलने दी रुक्मी ने, इसलिए वीक इंटेलिजेंस भीष्म को बताया गया। इच्छा थी उनकी लेकिन उनके अंदर वो साहस नहीं था। रुक्मी इज कंपेयर टू कंडीशन माइंड हु इज ऑलवेज ड्रैगिंग लिविंग एंटिटी टू मैरी हुम, द वाइल्ड सेंसेस। द कंडीशन माइंड इज ऑलवेज ड्रैगिंग द लिविंग एंटिटी टू मैरी वाइल्ड सेंसेस। शिशुपाल कौन है? अनियंत्रित इंद्रियां। तो हमारी भी इसी प्रकार की स्थिति है इस संसार में। हम चाहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध जुड़े, परंतु हमारी जो बुद्धि है भीष्मक की तरह वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि रुक्मी उसने कंट्रोल कर रखा है, और वो चाहता क्या है कि हम सब का विवाह किससे हो, शिशुपाल से। शादी का मौसम चल रहा है, लेकिन बद्ध जीवात्मा की स्थिति ऐसी है कि शायद शादी की डेट हो या ना हो, नित्य काल से ये रुक्मी जो है वो विवाह कराना चाहता है प्रकृति का अनियंत्रित इंद्रियों के साथ। तो अब रुक्मिणी देवी ने किया क्या? तो रुक्मिणी देवी का 5-level plan अब देखो, रुक्मिणी देवी एक स्त्री थी, लेकिन क्योंकि वो एक क्षत्राणी थी, तो उनके अंदर जो बुद्धि, दक्षता और तीव्रता और साहस, ये सब एक साथ। तो सबसे पहले रुक्मिणी देवी ने किया क्या, यदि हम उनके जीवन को देखें। तो अभी हमारी भी स्थिति, भूल मत जाओ कि हम हमारी चर्चा कर रहे हैं, तो यहां अवेयरनेस। इफ वी वॉन्ट टू मैरी कृष्णा, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ रुक्मिणी देवी, बिकम अवेयर अबाउट कृष्णा, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट हुई कि भीष्मक के महल में जितने साधु संत आते, तो साधु संत आकर जब भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते राजा भीष्मक को, तो छिपकर पर्दे के पीछे रुक्मिणी सुनती। दैट्स हाउ रुक्मिणी क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट कृष्णा। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू मैरी कृष्णा, फर्स्ट बिकम अवेयर अबाउट कृष्णा। अवेयरनेस के पश्चात नेक्स्ट लेवल रुक्मिणी का हुआ क्या? इंटेंस डिजायर। जब जानकारी प्राप्त होगी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तब जाकर इच्छा जागृत होगी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की। जैसे इतने समय से हम लोग इतने लेक्चर्स सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कितनी बार दामोदर लीला सुन ली, पूतनावध की लीला सुन ली, गोवर्धन लीला सुन ली, कितनी बार। तो इतनी बार सुनने के बाद कम से कम थोड़ी तो इच्छा हमारे अंदर अभी तक जागृत हो गई होगी कि कौन है ये कृष्ण मैं प्राप्त करना चाहता हूं या जानना चाहता हूं, हुई कि नहीं। तो देखो कितना सुनना पड़ा हमें, ये थोड़ी हरि बोल भी थोड़ा हमारा फीका हो रहा है। अभी अगर आपको हम कहें कि आज आप लोगों के लिए आज फिस्ट है, है क्या? आप लोग वही देख रहे हैं, लाइट बार बार जा रही है, आपको बता भी रही है जल्दी खत्म करो, आप फिर भी सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। तो हमको अगर कह दिया जाए कि मिसल पाव तर्रे वाली कहें 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 कहें, है ना, कैसे ना, कहें कहें कहें, क्यों? क्योंकि इतना सुन रखा है। तो वैसे ही कृष्ण का नाम सुनते हम लोग ऐसे करते कहें कहें, कभी होता है ऐसे? कोई अगर कृष्ण कृष्ण पुकारे, किधर है किधर है कृष्ण किधर है, और कई बार भगवान सामने देखते हैं, मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, अर्चविग्रह का दर्शन कर रहे हैं, कहां है? वो अलग तरीके से पूछ रहे हैं कहां है। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में ऑल्टर में बहुत से पूरा वृंदावन बनाया हुआ है, जैसे बंदर भी हैं, वो हंस भी है, मोर है, गाय है, बैल भी है, एक ऑल्टर में सब कुछ है। तो कई बार हमने देखा बच्चे फैमिली के साथ जब आते हैं ना, तो बच्चे उनको कोई लेना देना नहीं राधा रानी कृष्ण, मम्मी मम्मी बंदर 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 बंदर, और मम्मी क्या देख रही है, राधा रानी साड़ी अच्छी है मुझसे। तो हमारा तो यही हाल है, कोई बंदर को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो इंटेंस डिजायर रुक्मिणी देवी के अंदर, यूजिंग इंटेलिजेंस आफ्टर दैट, उन्होंने किया क्या कि उस तीव्र इच्छा को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ जोड़ा। कैसे? कि प्लान बनाया, यदि मुझे शिशुपाल से बचना है तो मुझे बुद्धि का इस्तेमाल, केवल तीव्र इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है, उस तीव्र इच्छा के साथ तीक्ष्ण बुद्धि। तो प्लान क्या बनाया कि भगवान श्री कृष्ण को मैं पत्र लिखूंगी, ओरिजिनल लव लेटर रुक्मिणी देवी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण को मैं पत्र लिखूंगी, और पत्र में प्लान बताया कि मुझे कैसे आकर किडनैप करो। अपने किडनैपिंग का प्लान भगवान को रुक्मिणी देवी ने दिया, कहां पर कैसे आकर किडनैप करना है। तो इसे कहते हैं अ डिवोटी से कृष्ण भजे बड़ो चतुर। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो श्री कृष्ण को भजता है वो बड़ा चतुर होता है। जैसे हमारे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू होने वाला है, तो बहुत से हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जब भी उनको ऐसे कोई कन्फ्रंट करता है, पिछले बुधवार हमने ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनी। एक बार हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बंबई में गीता बांट रहे थे, उस समय गीता का कॉस्ट 70 रुपए था, तो वो ट्रेन की बोगी में बांट रहे हैं 70 रुपए में गीता। तो एक आदमी, अरे क्या तुम 70 रुपए में गीता बांटते हो, अरे भगवान ने तो फ्री में सुनाई कुरुक्षेत्र में, 70 रुपए में बांटते हो तुम। तो इन्होंने पूछा कहां सुनाई, हाँ कुरुक्षेत्र में ही सुनाई गीता, फ्री में सुनाई। उन्होंने कहा और ये क्या है, बंबई है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 70 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो भक्त जो हैं बहुत चतुर होते हैं, जैसे कि रुक्मिणी देवी। उसके पश्चात नेक्स्ट उनका लेवल प्लान का क्या था, भक्त आश्रय। उन्होंने एक शुद्ध ब्राह्मण को बुलाया और वो पत्र उस शुद्ध ब्राह्मण को दिया कि ये जाकर भगवान श्री कृष्ण को दो। तो रुक्मिणी देवी सिखा रही हैं कि श्रवण के पश्चात तीव्र इच्छा, तीक्ष्ण बुद्धि भक्तों का आश्रय। और उस ब्राह्मण ने जाकर जब रुक्मिणी देवी का पत्र भगवान श्री कृष्ण को दिया तो भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी देवी जानती हैं कि मैं कितना प्रेम करता हूं शुद्ध ब्राह्मणों से। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो रुक्मिणी देवी ने आश्रय लिया एक शुद्ध भक्त का और फिर प्रॉम्प्ट एक्शन, कि ऐसा नहीं कि वो जो उन्होंने प्लान किया था उस प्लान पर अमल किया। अंबिका के मंदिर में वो गई, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और छिपके सबको ये दिखाते हुए कि हां आज मेरी शादी शिशुपाल से होने वाली है। तो बाहरी रूप से ये नहीं कि अब डिप्रेस होकर बैठ गई, अब तो क्या शादी का दिन है, अभी तो शादी शिशुपाल से हो रही है, कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, तो छोड़ो अभी क्या करना, अगले जन्म में देखते। नहीं, प्रॉम्प्ट एक्शन। इसलिए कलयुग में होता क्या है कि बहुत लोग हां प्रभु जी बस कल से 16 माला, परसों से 32, नेक्स्ट संडे भगवत धाम, तो हम लोग जब सुनते हैं ऐसे ऐसे आते ना जो दिवाली के एकदम पड़ 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 पटाके, कई होते हैं वो 100-200 की लड़ी होती है, 100-200 पड़ 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 5 मिनट में चलेगा, कई 1000 की लड़ी होती है 6-6 महीने तक एकदम, फिर बाद में दिखाई नहीं देते, फिर चिथड़े दिखते हैं उनके, यहाँ धुआं भी उड़ जाता है, चिथड़े दिखते हैं, यहाँ कहाँ गए भैया, आप अगले संडे तक भगवत धाम जाने वाले थे, अभी कहां पर हो? प्रभु जी साईखेड़ा में ही हूं अभी तक। पता नहीं साईखेड़ा क्यों याद है। तो हमको तो लग रहा था भैया आप तो पहुंच गए होंगे। तो होता क्या है कलयुग में बहुत मिलेंगे हमको बात करने वाले, बोलने वाले की ये कर देंगे, डींगे मारने वाले, लेकिन जब करने के लिए आएगा तो टाए टाए फिस हो जाती थी। रुक्मिणी देवी प्रॉम्प्ट एक्शन, कि भगवान जब आए वहां पर उन सब के बीच में, शिशुपाल रुक्मी इन सब के, जरासंध इत्यादि सब के बीच में उनकी सारी सेना, उनको आशंका थी कि ये कुछ हो सकता है कि कृष्ण आकर कुछ करे। सबके सामने रुक्मिणी देवी स्वयं इन सब के पिताजी के, हमको लग रहा होगा बॉलीवुड में तो मैंने बहुत देखा है, उन्होंने इंदर से ही सीखा है। तो प्रॉम्प्ट एक्शन ये बहुत जरूरी है। फिर हम ये जो दो मुद्दे हैं इसको एक बनाएंगे, क्योंकि दोनों तकरीबन एक ही हैं। एट्थ बेनेडिक्शन ऑफ जनन इज कृष्ण जन्म प्रोवाइड्स अनलिमिटेड सर्विस अपॉर्चुनिटी, कि भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे तो अलग अलग जो वहां पर भगवान के भक्त, उन्होंने अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा की। जैसे कि अभी नंद यशोदा ब्रजवासीगण वो तो लगे हुए थे भगवान के जन्म के समय, इतनी उनकी सेवाएं थी। तो पशु पक्षी सोच रहे थे, जैसे मोर, इन्होंने सोचा कि हम क्या सेवा करें, हम तो एक पक्षी की योनि में। तो मोर नाचने लगे, बस नाच नाच कर भगवान को आनंद दे रहे। यहां तक कि जो बारिश के बादल सोचने लगे कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, भगवान का जन्मोत्सव हम कैसे बनाएं। तो बादल सोचने लगे कि हमारे अंदर क्या है अर्पित करने के लिए, जल। तो बादलों ने आंसू के रूप में वर्षा वो करने लगे। और क्योंकि बादल, उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो अभिषेक होता है, तो हम हमारे बादलों के जो पानी होता है, हम हमारे वर्षा से उनका अभिषेक करेंगे, कीर्तन होता है और श्रृंगार होता है, तो हम श्रृंगार कैसे करेंगे, बिजली के रूप में। स्वयं का श्रृंगार हम कैसे करेंगे, बिजली के रूप में करेंगे। हम अभिषेक करेंगे वर्षा के रूप में। और कीर्तन कैसे किए बादल, घुर घुरायते, जैसे बादल गरजते आवाज आती है ना, तो वो जो गरजने की आवाज है वो कीर्तन के रूप में भगवान को अर्पित किया बादलों ने। इसलिए यहां पर कहा गया है, हमारे आचार्य कहते हैं कि यहां तक कि पशु पक्षी, घास के तिनखे, बादल, वृक्ष, लताएं, पत्ते, फूल, सब भगवान की सेवा में लग गए अपने अपनी ओर से। सो दिस इज द एइथ बेनेडिक्शन। कृष्ण जन्म प्रोवाइड्स अनलिमिटेड सर्विस अपॉर्चुनिटी। एंड नाइन्थ, कृष्ण जन्म ब्रिंग्स कोऑपरेशन अमंगस्ट डिवोटी। तो इसको हम एक ही पॉइंट लेंगे, कृष्ण जन्म प्रोवाइड्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस इन द एसोसिएशन ऑफ लविंग डिवोटीज। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे भक्त, उनके हम स्पिरिचुअल क्रेडेंशियल्स पहले देखेंगे कि इनके क्या स्पिरिचुअल क्रेडेंशियल्स थे, क्या इनको उपलब्धियां प्राप्त थी, और ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद इनके पश्चात एक ही इच्छा इन सब की कि हमें आपके भक्तों के संग में सेवा। परीक्षित महाराज सबसे पहला उदाहरण है, ध्रुव महाराज दूसरा उदाहरण है, सुदामा विप्र तीसरा, और हरिदास ठाकुर। ऐसे तो बहुत से उदाहरण है, परंतु हम ये विशेष चार उदाहरण लेंगे कि कैसे इन चार भक्तों को ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हुई और उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद जब इनको पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आपकी एक तीव्र इच्छा बताओ, तो इन सभियों ने अपनी एक तीव्र इच्छा बताई भगवान को, भक्तों के संग में आपका श्रवण कीर्तन और भक्तों की सेवा, ये मांगा इन्होंने। जो आठवां कारण हम देख रहे हैं, ये सबने वो मांगा। तो एक एक करके ये इनका क्रेडेंशियल्स हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले परीक्षित महाराज। कई बार हमको, हम लोग भक्तों के संग में सेवा और श्रवण कीर्तन को कितना साधारणता ले लेते हैं, है ना। अगर हमको भगवान आकर पूछे, मांगो एक तीव्र इच्छा तुम्हारी क्या है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे तो एक ही बोल रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, हम लोग तो वहीं से शुरू कर देंगे। लेकिन इनका क्रेडेंशियल्स पहले देखो। परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज, अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज। कोई है यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन पांडवों से, वो वंश के? सेकेंड क्रेडेंशियल, कृष्णा गेव प्राइवेट दर्शन इन द वूम। हम में से कोई है जिनको भगवान ने, हम जब गर्भ में थे तो भगवान ने गर्भ में आकर हमें दर्शन दिया? परीक्षित महाराज का एक दूसरा स्पिरिचुअल उपलब्धि, केवल दर्शन नहीं दिया, पर्सनली सेव्ड बाय कृष्णा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, एक नाम परीक्षित महाराज का है विष्णु रात, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। तो सुखदेव गोस्वामी हर समय परीक्षित महाराज को इस नाम से बहुत प्रेम से संबोधित करते थे, बहुत फेवरेट नाम था सुखदेव गोस्वामी का, ये बुलाने का बहुत फेवरेट तरीका था परीक्षित महाराज को, विष्णु रात। वन हु वॉज पर्सनली प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड विष्णु. फोर्थ क्रेडेंशियल, डायरेक्ट रिसीवर ऑफ श्रीमद भागवतम. ओरिजिनल स्पीकर से, सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट, जिनके लिए भागवत कथा की गई वो फर्स्ट श्रोता परीक्षित महाराज. तो ये सारे क्रेडेंशियल्स को लेके जब उनको पूछा गया तो श्रीमद भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भक्तों के संग में सेवा और श्रवण कीर्तन करूं. जो आठवां वरदान है, कारण है, वो मांग रहे हैं ध्रुव महाराज. यदि इनकी उपलब्धियां देखें, डायरेक्ट डिसाइपल नारद मुनि के, हम लोग कहते होंगे कि हम इसके शिष्य हैं उसके, यहां पर डायरेक्ट नारद मुनि के डिसाइपल ध्रुव महाराज, पहला क्रेडेंशियल. दूसरा, उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि 33 करोड़ देवता वो परेशान हो गए 5 वर्षीय ध्रुव महाराज की तपस्या से, कि वो भगवान के पास पहुंच गए. और फिर पर्सनल दर्शन भी, इनको 5 वर्ष की उम्र में पर्सनल दर्शन, डायरेक्ट फेस टू फेस भगवान श्री कृष्ण का. इतना ही नहीं, हम में से कौन है जो ये कहेगा कि हम इतने काबिल बन जाएंगे कि मृत्यु मूर्तिमान एक सीढ़ी हमारे सामने बने और उस पर पैर रखकर हम वैकुंठ विमान पर बैठे. ध्रुव महाराज की उपलब्धि देखिए, ही मेड डेथ परसोनिफाइड एज हिज स्टेप टू क्लाइंब वैकुंठ विमान. और फाइनली कौन कह सकता है कि हम में से कोई ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान एक अलग प्लैनेट क्रिएट करेंगे. ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे कि मैं, वो चाहते थे कि मैं आपके धाम में जाऊं. भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तेरे लिए एक अलग लोक क्रिएट करूंगा जिसका कभी विध्वंस नहीं होगा, ध्रुवलोक. सो इमेजिन कृष्णा क्रिएटिंग अ सेपरेट प्लैनेट. इमेजिन व्हाट ऑपुलेंस ध्रुव महाराज हैड, ओनली 5 ईयर ओल्ड हैविंग अ सेपरेट प्लैनेट. हमको कोई थोड़ा सा डोनेशन दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कोई बंगला दे दे, तो हम बहुत डिंगे मारते हैं. प्लैनेट दे दिया पूरा. नेक्स्ट सुदामा. तो हाँ, ध्रुव महाराज, ये बात मैं कहना भूल गया, ध्रुव महाराज को जब पूछा जाता है कि क्या आपकी एक तीव्र इच्छा है, तो भी यही कहते हैं कि भक्तों के संग में उनकी सेवा और भगवान का श्रवण कीर्तन. सुदामा विप्र, इनके उपलब्धियां कोई है? भगवान श्री कृष्ण का क्लासमेट, क्लासमेट भगवान श्री कृष्ण के रहे. जब सुदामा पहुंचे द्वारका भगवान के महल में, तो रुक्मिणी इत्यादि तो कोई नहीं जानता था, केवल भगवान ही जानते थे. और वो एकदम मैले कुचैले कपड़े पहने हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही सबसे पहले रुक्मिणी से कहा, उठो उठो यहां से, बैठने दो. अपनी पत्नी को इस प्रकार से कहना बहुत हिम्मत चाहिए. कृष्णा आस्क्ड रुक्मिणी टू एम्प्टी हर सीट. प्राइवेट दर्शन, अपने अंतपुर में सुदामा को ले जाकर भगवान 1-to-1. पूरा राज दरबार वेट कर रहा है, पूरा 16,108 रानियां सब वेट कर रही हैं. प्राइवेट दर्शन सुदामा को भगवान दे रहे हैं. पर्सनली वॉश्ड द फीट, सुदामा के चरण भगवान ने अपने हाथों से धोए, किसी सेवक को नहीं लगाया, खुद अपने हाथों में नीचे बैठकर सुदामा को ऊपर बिठाकर खुद भगवान चरण धो रहे हैं, चरणामृत को पी रहे हैं. और फिर कोई पुजारी नहीं कह सकता है कि जब मैं प्लेट बना रहा हूं तो भगवान ऑल्टर से उतरकर पहले ही जबरदस्ती मेरा ऑफर पहले किया नहीं, उससे पहले छीन के खा रहे हैं. इतना भगवान उत्सुक थे सुदामा के भोग के पीछे. और रुक्मिणी ने जब ये देखा भगवान का आदान प्रदान, तो रुक्मिणी ने अपने आप चामर उठाया और सुदामा की सेवा करने लगी। कौन है रुक्मिणी? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, आदि लक्ष्मी। जितनी सारी ये भाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सारी लक्ष्मियों की आदि लक्ष्मी रुक्मिणी चामर कर रही है सुदामा। और फाइनली भगवान ने जो स्पेशल ऑपुलेंस दिया, एक बहुत ही सुंदर सुदामा विप्र की कथा में ये बात आती है कि भगवान ने बिना सुदामा को बताए सुदामा के झोपड़े को महल बना दिया। ये तो कथा हम सब जानते हैं। अब जब सुदामा द्वारका से वापस जा रहे हैं, तो भगवान ने सुदामा कि कोई जो क्या कहते हैं उसको पदत्राण नहीं दिए पहनने के लिए, यहां तक कि बताया कि जो थे वो भी ले लिए, नंगे पैर भेजा। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अरे कम से कम अभी वहां पर इतना सब ऐशो आराम सब उपलब्ध करा के दिया, तो यहां से कम उनको थोड़ा अच्छा कपड़ा वपड़ा नया पहना के फुटवेयर दे के नहीं। तो भगवान ने नंगे पैर सुदामा को भेजा कि द्वारका से लेके सुदामा उनके घर तक नंगे पैर जाएं और जहां जहां जाएं उसको तीर्थ बनाकर जाएं। भगवान ये दर्शाना चाहते थे कि सुदामा के चरण की धूली उस हर जगह को तीर्थ बनाएगी। ये सुदामा के क्रेडेंशियल। और सुदामा को जब पूछा गया कि भाई आपको इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें, क्या इच्छा है आपकी? क्या मांगा सुदामा ने? भक्तों के संग में सेवा, यही मांगा सुदामा। फाइनली शीला हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर एक वैश्या को वैष्णवी बनाया और वो भी साक्षात माया देवी थी, उसको वैष्णवी बना दिया। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य ये पद इनका घोषित किया। नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु रोज इनकी वृद्ध अवस्था में हरिदास ठाकुर से मिलने आते, स्वयं साक्षात जगन्नाथ मंदिर में इनको अलाउ नहीं था जाना, तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में या जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना महाप्रसाद लेकर मिलने आते। और फाइनली जब इन्होंने अपना देह त्यागा तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार इनका किया। और जब हरिदास ठाकुर को पूछा कि आपकी कौन सी एक तीव्र इच्छा मैं पूरी करूं, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे आप एक ही वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में किसी भक्त के घर में एक कुत्ता बनूं, ताकि मैं हर समय उनका अवशेष प्राप्त कर सकूं और उनके संग में रहूं। और फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं, क्षमा करना, मैंने बहुत बड़े वरदान मांग लिया, मैं उसके भी लायक नहीं। तो ये ऐसे ऐसे भक्त जिनकी ऐसी उपलब्धियां, और वो क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग, भक्तों के संग में सेवा और भगवान का श्रवण कीर्तन। और इसलिए सिक्स रिवॉर्ड्स ऑफ सर्विंग इन एसोसिएशन, सबसे पहला रिवॉर्ड भक्तों के संग में भगवान की सेवा करने से होता क्या है? अवर सेंसेस विल बिकम प्यूरिफाइड, प्रोटेक्शन फ्रॉम माया इज गारंटीड, अवर मिस्टेक्स विल बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड इन एसोसिएशन, वी विल लर्न टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, लर्न कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, एंड फाइनली इट्स ट्रेनिंग इन हाउ टू सर्व इन वैकुंठ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस भौतिक संसार में क्यों लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। आप देखो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का ट्रांसलेशन क्या किया? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब तुम खाली डिवोशन डिवोशन भक्ति भक्ति बोलते मत रहो, करो कुछ कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कुछ करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भर भर कर सेवाएं दी। आप देखो कभी भी आप इस्कॉन के मंदिर में जाओगे तो भक्त लगे हुए हैं, कोई भगवान के लिए कोई पूजा कर रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई हार बना रहे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, सेवा में लगे हुए। तो क्यों प्रभुपाद को जब एक बार पूछा गया कि इतना इंटेंस प्रोग्राम सेवा का क्यों दिया गया, तो प्रभुपाद ने दो रीजंस दिए। एक रीजन प्रभुपाद ने दिया, सो दैट व्हेन यू रीच वैकुंठ यू डोंट रिमेन अनट्रेन्ड, बिकॉज कृष्णा डजंट वॉन्ट अनट्रेन्ड सेवक्स, ही वॉन्ट्स ट्रेन्ड सेवक्स, सो दैट यू कैन गेट ट्रेनिंग ओवर हियर। एंड सेकेंड इज द मोर यू सर्व कृष्णा द लेस यू विल आस्क सर्विस फ्रॉम कृष्णा। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आप देखो लोग जाते हैं भगवान के पास, जन्म देही धनम देही पुत्रम देही, सब जो श्लोक ये लिस्ट लेकर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर का एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कलयुग में ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ठीक क्या गंगा उल्टा बह रही है यहां पे, कि भगवान से सेवा ली जा रही है जबकि भगवान को सेवा देनी चाहिए हमें। पता नहीं ये कहीं गुजरात में मंदिर है, अब ये भगवान का एक डायरमा जैसा बनाया, हाथ में थाली है और भगवान डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जा जाके अंदर जा जाके प्रसाद दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हाता आते प्रसाद लो, ये है कलयुग, वो बैठा है मजे में और भगवान को लगा रखा है, हाँ महल अंदर जा रहा है। तो कलयुग में स्थिति क्या है, हर चीज श्रीमद् भागवत में और भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में धीरे धीरे धर्म के नाम पर हर चीज फर्जी होगी। फर्जी फर्जी समझते ना, काउंटरफीट जाली, कलयुग में हर चीज। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल लोगों को धर्म पर भी विश्वास क्यों नहीं, क्योंकि सब जगह पर चीटिंग चल रहा है। बाहर जाओ वहां चीटिंग चल रहा है, आप सही पथ को चुनने जाओ वहां पर चीटिंग चल रहा है। जैसे एक गांव में, गांव के स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए, तो अचानक एक क्लासरूम में ऐसे सरप्राइज विजिट के लिए क्लासरूम में घुस गया, तो विद्यार्थी बैठे हुए थे, एक विद्यार्थी को पूछता है, बेटा बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बोलता है रामलाल। तो रामलाल कौन है? मेरे पिताजी का नाम है। तुम्हारे पिताजी क्या प्रधानमंत्री है क्या? बोले नहीं, वो 5 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, मां बार बार कहती है प्रधानमंत्री बन गए होंगे शायद। तो इंस्पेक्टर बोलता है, ये तुमने सीखा है यहां पर, तुमको मैं आज सस्पेंड करता हूं स्कूल से, आप कर ही नहीं सकते, यकीन मान लो आप मेरे को सस्पेंड कर ही नहीं सकते। तो इंस्पेक्टर एकदम बोले क्या कौन से बच्चे कौन से स्कूल के, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्कूल का हूं ही नहीं। तो इंस्पेक्टर पूछता है तो फिर कौन से स्कूल के हो, मैं कोई स्कूल का नहीं हूं, मैं तो बकरी चराने आया था। ये मास्टर जी ने कहा कि आज इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, 5 रुपए मुझे दिए, बच्चे कम थे आज तो मुझे बिठा दिया यहां, क्या निकालोगे मुझे आप। तो अभी वो टीचर की ओर देख रहा है, टीचर ये सब तुम करा रहे हो, मैं तुमको सस्पेंड करूंगा। बोला सर मैं भी टीचर नहीं हूं यहां का, वो मेरा भाई घासलेट के लाइन पे खड़ा हुआ है, उसने कहा इंस्पेक्टर आने वाला है तू जाकर आधे घंटे वहां पर मेरी ओर से खड़ा हो जा। तो अभी प्रिंसिपल के पास जा रहा है इंस्पेक्टर, सोचो प्रिंसिपल के पास जा रहा है, ये हो क्या रहा है, फर्जी बच्चे फर्जी टीचर और तुम कौन हो, तुम प्रिंसिपल हो कि नहीं। बोले देखो भाई मेरे चाचा जी हैं प्रिंसिपल, वो कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं, मेरे को बिठा रखा है, आप मैं जानता हूं आप इंस्पेक्टर हैं, ये लो 10,000 रुपए आपके लिए निकाल के रखे थे, साइन कर देना कि सब कुछ ठीक है यहां पर। तो ये बोलने लगा बाप रे आप लोगों को डर भी नहीं लगता, फर्जी बच्चे फर्जी टीचर प्रिंसिपल भी फर्जी, अरे वो तो मैं था कि 10,000 में मान गया, असली इंस्पेक्टर आता तो तो ये कलयुग का हाल है, सब चीज अल्प अल्प अल्प। इसलिए आज हम फाइनली आपको एक बहुत ही सुंदर एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें बताया गया है कि यदि भगवान श्री कृष्ण को हमें प्राप्त करना है तो क्या हमारे अंदर योग्यता चाहिए। लाइट्स बंद कर,
हाय आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। एक बार एक इंसान सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा था, मंदिर में अंदर जाने से पहले बाहर ही उसने सिगरेट फेंक दिया और मंदिर में जब गए अपने जो रीति रिवाज जो रिचुअल्स थे उसे पूरा किया, बाहर निकले और वापस आदत के मुताबिक सिगरेट लिया। अब एक सवाल, उन्होंने मंदिर में सिगरेट क्यों नहीं पिया? सिंपल जवाब है, आप भी जानते हैं कि हाँ क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं और मंदिर में हम कैसे सिगरेट पी सकते हैं अपने भगवान के सामने। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मंदिर नामक उस 4 दीवार के अंदर है, बाहर कहीं पर भी नहीं है। वैसे तो हर एक धर्म और आध्यात्मिकता में हमने जाना तो सीखा कि भगवान हर जगह है, ही इज ओमनीप्रेजेंट, और इसलिए अगर आप मंदिर में सिगरेट नहीं ले सकते हैं तो बाहर कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमारा यह मानना कि हां भगवान सिर्फ मंदिर में है या मूर्ति में है, इसी के तो काफी सारे फायदे भी तो हम उठाते हैं। यू नो एक बार हुआ कुछ ऐसा कि आपके घर पर डोर बेल बजा, आपने दरवाजा खोला, सूट बूट में एक इंसान खड़े थे और आपने पूछा भाई कौन हो, बोले कृष्ण, बोले कौन कृष्ण, बोले वही जिन्हें तुम सालों से याद करते थे, मेरी ही तो तुम पूजा करते थे, इतने सालों से तुम मुझे याद कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला, तुम मुझे देख सकते हो तुम मुझे सुन सकते हो, कोई और ना देख सकता है ना सुन सकता है और 24 घंटे हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब लेट्स से कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि 24 घंटे आपके भगवान आपके साथ है, आप अपनी जिंदगी कैसे जी पाएंगे जरा सोचिए। क्या अब आपसे ये पॉसिबल होगा कि आप अपनी दुकान पर जब कस्टमर आपके सामने है और आपके भगवान आपके साथ है, उस कस्टमर से आप ये कह पाएंगे कि आपको जितना सस्ता मैं देता हूं उतना सस्ता तो मैं किसी और को नहीं दे पाता हूं। जरा सोचिए, आप अपने डीलर के साथ जब बात कर रहे हैं तब क्या फोन पर ये कह पाएंगे कि भाई आप जिस दाम पर मुझे दे रहे हैं उस पर तो मुझे कुछ कमाने को ही नहीं मिल रहा है। या फिर कोई देर आप घर पे लेट पहुंचे और आपकी वाइफ जब दरवाजा खोलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप लेट क्यों आए, आपके भगवान आपके साथ है, जवाब दो लेट क्यों आए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी में भगवान को इसलिए मंदिर और मूर्ति तक सीमित रखते हैं क्योंकि अगर कोई दिन वो बाहर निकल जाए, हमारे साथ जीने लगे, हर पल हमारे साथ हो जाए, तो शायद हम गलत कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अपनी जिंदगी को आसान रखने के लिए हमने उन्हें सिर्फ मंदिर और मूर्ति और फोटोग्राफ तक सीमित रखा हुआ है। आप जिनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं वो इंसान भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं, मगर वो कभी नहीं भूलने वाले हैं। और इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छी जिंदगी जीना, सही तरीके से जीना बहुत ज्यादा जरूरी और आवश्यक है। हम पूजा पाठ करते हैं, यात्राएं करते हैं, हवन करवाते हैं, गरीबों में दान करते हैं और बहुत कुछ, मगर अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके एक सिंपल प्री रिक्वायरमेंट है। क्या आप कभी कोई गंदी कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? क्या आप गंदे कपड़े पहनना चाहेंगे? क्या आप गंदी थाली में खाना खाना पसंद करेंगे? अगर इंसान होने के नाते हम गंदी कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं, गंदे कपड़े पहनने को तैयार नहीं, तो गंदी थाली में खाना खाने को तैयार नहीं, तो हमने कैसे सोच लिया कि भगवान कोई गंदे दिल तो दिमाग में बसेंगे। और इसलिए अगर कोई सबसे बड़ी प्री रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचने की और आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपको साथ दे, तो बस इतना ही है, प्यूरिफाई योरसेल्फ।
समझ में आया कि भगवान अवतरित होते हैं अपने अलग अलग रूप में, चाहे वो ग्रंथ के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, यज्ञ के रूप में, नाम के रूप में, धाम के रूप में, ताकि हम उनको बैठने के लिए एक साफ कुर्सी दें, हम उनको खाना खिलाने के लिए एक साफ सुथरी प्लेट दें, या हम हमारे हृदय में उसको आने के लिए हमारा हृदय साफ रखें। तो ये जो हम इतने कारण, कितने सारे कारण हमने उसकी चर्चा कर ली, 8 कारण अब तक हो गए। Why Krishna जन्म इज दिव्य, जस्ट सो दैट ही कैन प्यूरिफाई अवर हार्ट। द फर्स्ट रीजन, विच चाइल्ड इज बॉर्न विद अ मिशन टू सेव प्लैनेट अर्थ, चूजेस हिज ओन पेरेंट्स बिफोर बर्थ, पर्सनैलिटीज लाइक शुकदेव एंड परीक्षित महाराज ग्लोरिफाई हिज जन्म, विच चाइल्ड ब्रिंग्स ऑल ऑस्पिशियसनेस विद हिज बर्थ, clears all confusion, provides abundant resources to earth by his birth, reignites the fire of bhakti in our hearts, which child unites devotees in rendering loving devotional service unto him. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमने अब तक देखा भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है इन 8 कारणों के वजह से, और इसके पश्चात फिर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उसके पश्चात उन्होंने कहा है मेरे कर्म, तो उसकी चर्चा हम करेंगे भाग नंबर 5 में। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शिल प्रभुपाद की, विधाय गौर प्रेमानंदी।
हरे कृष्णा। आज का जो प्रसादम है वो हमारे मंदिर के हरीश भाई, जो ग्रेप सिटी होटल के जो मालिक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है उनके कन्या की शादी के उपलक्ष्य में। तो मैं हरीश भाई को निवेदन करता हूँ 2 मिनट के लिए आप आगे आइए और एक छोटी सी भेंट मंदिर की ओर से स्वीकार कीजिए। तो आज उन्होंने बहुत मेहनत करके प्रसाद सारे भक्तों के लिए अरेंज किया यहाँ पे, जो गर्म गर्म आपको दे सके। तो हमेशा ये मंदिर किचन में काफी हेल्प करते हैं, तो इनके पूरे परिवार को हम धन्यवाद देंगे और प्रभु जी से अनुरोध करते हैं इस 3 बार हरि बोल के धन्यवाद देंगे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। भगवान आत्मानंद रूपा जी की सॉरी उनके खुद के मैरिज का 27th एनिवर्सरी है और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो क्षमा कीजिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन गलत आया है यहाँ पे। तो हम धन्यवाद देंगे माता जी प्योर जी को कि शादी करा के तो 27 साल के बाद भी सब उसका आनंद ले रहे हैं, तो 3 बार बोल हरि बोल के धन्यवाद फिर से देंगे। हरी बोल हरि बोल हरि बोल। जो भी भक्त भगवद्गीता कॉन्टेस्ट में सेवा दे रहे उनके लिए ये सूचना है कि आने वाले रविवार तक आपके जितने भी एंट्रीज है वो फाइनल लिस्ट आपको हमारे अकाउंट को सबमिट करना है विभूति प्रभु अचेवलकर प्रभु को, और उसको क्लोज करना है। जो स्कूल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे अभी उसको आप रुका सकते हैं, और इन सब भक्तों की जो मीटिंग है वो संडे भागवतम क्लास के बाद होगी ताकि एक फाइनल रिपोर्ट हम तैयार कर सके। और सब भक्तों के अनुरोध के लिए कि अभी तक 18 स्कूल का सबमिशन हुआ है और 1500